यह क्या दुलबर को अब इनका क्या हाल है, करीब है कि बिजली यख्तफु अबसारहुम, इनकी निगाहों को उचक ले। पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा ना कि उनके नूर अल्लाह ने ले लिए, उनके तो ले लिए गए नूर, वो तो अंधे हो गए। इनका क्या है, करीब है कि बिजली इनकी निगाहों को उचक ले, यानी बहुत मुमकिन है। यकादु किस चीज के लिए आता है, कोई ऐसा काम जो बस होने वाला है उसको बयान करने के लिए। हो सकता है जल्दी कि बिजली इनकी नजरें उचक ले, यानी अब इनके अंदर से भी तौफीक छिन जाए, हक को कबूल करने की सलाहियत इनकी भी खत्म हो जाए, इनको भी समझ ही ना आए कि हक क्या है और बातिल क्या है, इनको भी बुराई और भलाई का फर्क, इनके अंदर से जो फर्क करना है उसकी सलाहियत खत्म हो जाए। वो भी ऐसे ही इंसान सोचने लगे जैसे कि काफिर सोचते हैं ना, उसी तरह वो भी दीन के बारे में सोचने लगे, तो ये इसका मतलब है कि उसकी सलाहियत खत्म हो गई है। इनकी अभी खत्म नहीं हुई, अल्लाह ताला ने फरमाया यकादु करीब है, इनकी इस काम की वजह से, इन जो ये कर रहे हैं इसकी वजह से बहुत मुमकिन है कि इनके साथ भी ऐसा हो जाए। इनको इस्लाम में खैर फिर नजर ही नहीं आएगी, फिर इनको भी काफिरों की तरह इस्लाम में मीन मेखे नजर आएंगी, प्रॉब्लम्स नजर आएंगे, एतराजात नजर आने लगेंगे, लेकिन अभी ये हुआ नहीं है। बट दे आर क्लोज टू इट, बहुत क्लोज है इस चीज से। कुल्लमा अदा लहुम मशौफी, जब कभी उसने रोशनी की, किसने किसने की रोशनी, वो बर्क ने, बर्क है ना चमकती है, तो जब कभी उस बर्क ने रोशनी की, लहुम उनके लिए, मशौफी वो चल पड़े उसमें। सुभान अल्लाह, कैसे लोग हैं कि जू ही रोशनी होती है ना, रोशनी मैंने क्या बताया, बर्क के नीचे आपने लिखा है क्या है, बर्क, बर्क में क्या है, उम्मीद वाली बातें, खुशखबरियां, मुसलमानों को कोई फायदे हासिल हो रहे हैं, कोई ऐसी बात अच्छी जो उनके लिए फायदों की बात है, तो क्या होता है, मशौफी, तो उसमें चल पड़ते हैं। यानी जब कभी ऐसे अहकामात नाजिल होते हैं जो उनकी कन्वीनियंस पे होते हैं, जिसमें उनको सहूलत होती है, जिन जो उनकी ईज वाले होते हैं, आसानी वाले होते हैं, वो जब आते हैं ना ईजी चमक वाले, तो इसमें कोई ज्यादा मसला नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको करने में कुछ भी खपना नहीं पड़ रहा इसके लिए, तो फिर क्या है, फिर कर भी लेंगे। ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं करते, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, कभी कभी कर लेते हैं, मगर एट देयर ओन कन्वीनियंस, उनको कन्वीनियंस वाला दीन चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि बस जो आप कहें वैसे ही हम करें, हमने अपनी जिंदगियां थोड़ी बेच दी हैं। अच्छा दीन होगा मस्जिद में होगा और वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अब हम हर चीज ही दीन की माने, इतने भी नहीं एक्सट्रीमिस्ट होने की जरूरत ना। तो भाई देखो, जो इजी इजी है वो कर लेते हैं, अब उनको क्या इजी लगता था, चलो फिर ठीक है नमाज पढ़ ली, अब नमाज भी जो है ना ये फजर की नमाज उसके पर बड़ी भारी होती है, मुनाफिक पे उठना पड़ता है ना, मस्जिद जाना भी भारी होता था, लेकिन क्या करें, फिर मुसलमान कहेंगे कि अच्छा ये मुनाफिक है, तो फिर हम ही तो नहीं ना ये कहलवाना चाहते, उनको भी तो खुश करना है ना, उनको भी राजी रखना है कि हम दीनदार हैं, अब वो दीन का भी एक लेबल लगाए रखना है। अल्लाह ताला ने जिसको सूरत अल हज में फरमाया ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अल हज में, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, लोगों में से बाज ऐसे हैं जो किनारे किनारे पे रह के अल्लाह की बंदगी करते हैं, पूरे पूरे नहीं इस्लाम में दाखिल होते, किनारे किनारे पे, अगर भलाई मिले तो मुतमईन हो जाते हैं, खुश होते हैं कि भाई अच्छा कोई फायदे मिल रहे हैं इस्लाम की वजह से, तो मतलब कोई आसानियां हैं, तो फिर खुश हैं, फिर इट्स ओके, ठीक है, ठीक है, फिर चल पड़ते हैं उस पे। लेकिन अगर कोई बुराई पहुंचे तो उसी वक्त फिर गए। बुराई पहुंचती है यानी बुराई से मतलब क्या है, कोई मुश्किल है, कामात आ गए, कोई मुश्किलात आ गई, कोई कुर्बानी देने का वक्त आ गया, कोई जान माल मांग ली, कोई और मुतालबा कर दिया, तो या कोई आजमाइश आ गई इस्लाम के ऊपर, तो फिर वापस मुड़ जाते हैं, वापस चल पड़ते हैं। नहीं फिर नहीं 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 ये नहीं हमसे हो सकता। फिर उसको ही कहा गया यहाँ पे, वा अज़लमा अलैहिम क़ामू, जब उसने अंधेरा किया, तारीख हो गया, मुश्किल अहकामात आ गए। ज़ुलुमात क्या थी? मुश्किल अहकामात, नीचे लिख लिया ना आपने। तो जब अंधेरा आ गया उनके ऊपर, क़ामू, खड़े हो गए, खड़े हो गए, फिर ठिटक के रह गए वहीं पे। अरे अब कैसे चले, चलना क्या, किस चीज की अलामत है? अमल कर रहे हैं ना, और फिर वो उसी वक्त खड़े हो गए, नहीं 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 इस रास्ते पे हम नहीं चल सकते, नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, आजकल कैसे करें, इस जमाने में कौन इस्लाम पे चल सकता है, आजकल तो नहीं चला जा सकता, क्या करें फिर, हम अपनी दुनिया छोड़ दें दीन के पीछे। बस ये लोग तो कहते हैं बस कुछ ना करो, बस अल्लाह अल्लाह करते रहो, दुनिया छोड़ दो। ये तो इन्होंने अपनी, मौलवियों ने अपनी मन घड़त बातें बनाई हैं, सुनी अनसुनी कर देते हैं, वहीं पे खड़े रहते हैं, चलते नहीं है उस रास्ते पे, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। मुश्किल जो आ गई है, इस्लाम के लिए अपनी कोई ख्वाहिश कुर्बान करनी पड़े, या अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त निकालना पड़े, या जिस तरफ सारे लोग चल रहे हैं उससे ऑपोजिट हमें चलना पड़े, तो चलते हैं? नहीं नहीं बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। कुर्बानी वाली अहकामात जिसमें हमें अपनी मर्जियां छोड़नी पड़े, जिसमें हमें अपने नफ्स के खिलाफ जाना पड़े, जिसमें हमें कोई अपने माशरे के खिलाफ चलना पड़े, जिसमें हमें कोई मुश्किल आ रही हो, जिसमें हमें कन्वीनियंस ना हमारी मिले, तो काम हो, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, हम नहीं तैयार करने के लिए। हालांकि अगर इस पे चलते तो अल्लाह ताला उसमें आसानी कर देते, मैंने आपको बताया ना अभी। तो टाल मटोल कर देते हैं, सुनी अनसुनी कर देते हैं, खड़े रह जाते हैं। अब हम सब भी अपने लिए सोचें इस बात को, अपना जायजा लें, कौन से इस्लाम के अहकामात हैं कि ये, आप हर एक को अपना अपना खुद जायजा लेना है, आप अपने लिए सवाल लिखें, कौन से इस्लाम के अहकामात हैं कि जिनका मुझे पता है कि अल्लाह का हुक्म है, लेकिन मेरे लिए वो ऐसे ही है जैसे जुलुमात, और मेरे लिए वो ऐसे ही जैसे राद। उनको सुन के मेरा यही हाल होता है कि जैसे कानों में मैं उंगलियां ठूंस लूं कि मुझे सुने भी ना ये, मैं सुनना भी नहीं चाहती इन बातों को, इस टॉपिक को। कौन कौन से हैं अल्लाह के हुक्म, उन पर अमल करना मेरे लिए मुझे नामुमकिन लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं मर जाऊंगी अगर मैंने इनके ऊपर, हजर अल मौत, मुझे मौत की तरह लगते हैं वो, और मैं खड़ी हो जाती हूं, मैं नहीं करती। और कौन से हुक्म है कि चूंकि वो मेरी कन्वीनियंस पे हैं इसलिए मैं उनको करती हूं। जो मैंने देखिए आपको ये बहुत सिंपल सी एक बात बता दी है, जब इंसान करने लगता है ना तो आसानी हो जाती है। अब कई लोगों के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ना भी आसान नहीं है, उनको वो भी मुश्किल लगता है, और कई लोग तो हज्जुद भी आसानी से पढ़ रहे हैं 5 वक्त की नमाज के अलावा। क्या चीज है, एक वो ही अमल है, एक के लिए मुश्किल और एक के लिए आसान क्यों हो गया? एक जैसे दो लोग, एक ने करना शुरू कर दिया, कूद गया, उसने सोचा नहीं, और दूसरा जो है वो डरता ही रहा, उसको ऐसे लगा ये मेरे लिए मौत है। तो अल्लाह ने अहाता किया हुआ, याद रखें अल्लाह की पकड़ से कोई निकलने वाला नहीं है, यानी कानों में जितनी मर्जी उंगलियां ठूंस लो मगर तुम बच तो नहीं सकते अल्लाह की पकड़ से। तुम सोचते हो मैं आजाद हूं, मैं जो मर्जी करूंगी, जब मर्जी चलूंगी, जब मर्जी रुक जाऊंगी, मेरी मर्जी। नो वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, ये तुम्हारी भूल है। अल्लाह ने घेरा हुआ है चारों तरफ से। सोचें जरा कि कोई किसी मुजरिम को कह दिया जाए कि बाहर से पुलिस के लाउड स्पीकर पे, चलो मुजरिम ना भी है, वो कोई आम बंदा है, उसको बाहर से वो कह रहे हैं कि तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया, अब तुम कहीं भाग नहीं सकते हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तो उसकी जान हवा हो जाएगी, क्या हालत रहेगी उसकी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अहाता किए हुए उनका, जिनके ये हालात हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमईहिम व अबसारिहिम, और अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह ताला जरूर ले जाता इनकी भी समात और इनकी भी बसारत। पिछले में क्या था, सुम्मुन बुकमुन उमियन, वो तो अंधे गूंगे बहरे हो चुके हैं, उनका नहीं है कोई चांस, लेकिन इनके पास अभी चांस है। अगर अल्लाह चाहता तो इनकी भी समात और बसारत ले जाता, ना इनको कुछ दिखता और ना इनको कुछ सुनता, ये भी वैसे के वैसे ही हो जाते, यानी इनकी भी तौफीक बिल्कुल छिन जाती, ना ये हक को देख सकते, ना कोई इनको बताता और ये वापस आते। लेकिन इनके पास चांस है, दे हैव चांस, इनके ये मुनाफकत की पहली स्टेज में अभी, या समझ लें ईमान की लास्ट स्टेज पे है, ज़ोफ़े ईमान है, कमजोर तरीन ईमान है इनका, कमजोर तरीन ईमान के बाद ही फिर मुनाफकत शुरू हो जाती है ना। तो आइदर आप इनको ये कह सकते हैं कि ईमान की बॉटम पे बिल्कुल लास्ट उसके ऊपर है, और या फिर ये एंटर हो गए हैं फर्स्ट स्टेज में, उसके नीचे तो क्या है, मुनाफकत ही है, तो या फिर मुनाफकत में एंटर हो गए उसकी पहली स्टेज पे। अल्लाह ताला ने अभी इनको चांस दिया है, वार्निंग है यहां पे, अगर अल्लाह चाहे ना तो देख लो, याद रखो कि तुम्हें पकड़ सकता है, दिस इज अ वार्निंग। लेकिन क्या है, अभी अल्लाह ने तुम्हें टाइम दिया है, अभी अल्लाह ने तुम्हें चांस दिया है कि अपने आप को सही कर लो। इन अल्लाह अला कुल्ली शैन कदीर, ये ना समझना कि अल्लाह ऐसे नहीं कर सकता, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो ले जा सकता है तुम्हारी भी समात और बसारत, तुम्हें भी ऐसे ही कर सकता है जैसे वो लोग हैं। अब उन लोगों को तो हक नजर ही नहीं आता, उन लोगों के लिए दीन इस्लाम में इतनी मीन मेखे हैं, जैसे बिल्कुल काफिर सोचते हैं ना, उनकी भी सोच ऐसे ही हो गई इस्लाम के बारे में, वो भी इस्लाम के ऊपर इसी तरह इतराजात करते हैं, वो भी इस्लाम के ऊपर इसी तरह बातें घड़ते हैं, और वाकई ऐसे होता है ना, आज भी आप देखेंगे मुसलमानों में ऐसे लोग हैं। तो वो कौन सी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि अब उनके अंदर की जो तौफीक है ना वो भी छिन गई है, अब उनको नजर ही नहीं आ रहा कि हक और बातिल में फर्क क्या है, उनको नजर ही नहीं आ रहा कि भलाई और बुराई क्या है। तो ये ना हो कि तुम्हारा भी ये हाल हो जाए, अभी तो ठीक है तुम्हारा कमजोरी है, तुम कहीं चले कहीं कहीं चल भी लेते हो, ये ना हो कि फिर बिल्कुल ही पीछे रह जाओ, क्योंकि अगला अगर इसी पे बढ़ते गए तो फिर यही होगा। तो ये भी एक बीमारी है, और बीमारी की दवा ना की जाए तो क्या होता है, बढ़ती जाती है ना। तो ये ना हो अल्लाह ताला तुम्हारी एबिलिटी छीन ले, वार्निंग दी है अल्लाह ताला ने। और अगर हम अपने आप को पहली कैटेगरी में ना सही दूसरी कैटेगरी में देखें ना, तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमारी अपनी तस्वीर खींची गई है यहां पर। हम सब क्या चाहते हैं पहले ये बताएं, हम सब क्या चाहते हैं, कौन सा कुरान हमें अच्छा लगता है बताएं, या सोच लें चलो हम क्या मुसलमानों की मेजॉरिटी जो है कौन सा कुरान उनको अच्छा लगता है, जो बरकतों वाला कुरान हो, जो वजीफों वाला कुरान हो, जो बस थोड़ी बहुत कुछ और सवाब कमाने वाला कुरान हो, वो नहीं चाहते कि ऐसा कुरान लें जिसमें ये लिखा हो कि ये करो और ये ना करो, राइट। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना हम तो तिलावत करते हैं कुरान की, तो हमें क्या जरूरत है सीखने की, हम रोज पढ़ते हैं कुरान को, एक दो रुकू पढ़ लेती हूँ सुबह को, ये सीखने का आप क्यों कहते हैं कि आओ सीखो, ये नहीं हमसे किया जाता, क्यों नहीं किया जाता, इसलिए कि ये हमसे सुना भी नहीं जाता कि करो ये और ये ना करो। इसमें तो फिर कहीं, अभी मैं बता देती हूँ, कई लोगों को ये खौफ होगा इसमें हिजाब की आयतें ना आ जाएं, कहीं हमें हिजाब ना लेना पड़ जाए। किसी के लिए कोई और चीज मुश्किल होगी, किसी के लिए किसी को माफ करना मुश्किल होगा, किसी के लिए सूद की आयात मुश्किल होंगी, किसी के लिए को तोहमत ना लगाने वाली आयात मुश्किल होंगी, किसी के लिए जो जहन्नुम की और आखरत के दिन की, कयामत के दिन की आयात है वो मुश्किल होंगी। तो कई चीजें हैं जो हमारे फियर्स होते हैं, हम फिर उस वजह से कुरान की तरफ ही नहीं आते, क्योंकि हमें अच्छा बस ये लगता है कि ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ते जाओ, हमें हर हर हर्फ के बदले 10-10 नेकियां मिलती जाएं, बस ये इतना काफी है, जुलुमात और रात ना हो इसके अंदर। हाँ, जब बर्क आएगी कभी तो फिर ठीक है, जब मैं समझूंगी कि हाँ मेरे लिए ठीक है तो फिर मैं कर लूंगी, लेकिन जो मेरी कन्वीनियंस हो, जिसमें मुझे इजी लगे, जो आज के जमाने के मुताबिक भी चल सकती हो चीज, नहीं, ऑपोजिट द टाइड्स मुझे अगर स्विम करने को कहा जाए तो वो नहीं मैं कर सकती। हाँ, जिधर को हवा का रुख है उधर को चलती रहूंगी, जिधर सारे चल रहे हैं। तो क्या हम सबके पोल नहीं खुल जाते इन आयात में? और फिर देखें कि कितनी बड़ी वईद अल्लाह ताला ने दी है इनमें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे ऐसी मुनाफकत से। तो ये जो ऐसे मुनाफिक है ना, आप देखें कयामत के दिन क्या होगा। इब्ने कसीर में है ये बात कि रोजे कयामत भी इनका यही हाल होगा कि जब लोगों को उनके ईमान के मुताबिक नूर मिलेगा। ये आपको थोड़ा सा बता दूं, जिनको नई इल्म, सूरह हदीद में ये आयात आती हैं, जो पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि कयामत के दिन एक पुल, जिसको हम पुल सिरात कहते हैं, जहन्नुम के ऊपर वो रखा जाएगा, और उस पुल सिरात से गुजर के हर एक को जन्नत में पहुंचना है। अगर पुल क्रॉस कर लिया सलामती के साथ फिर तो जन्नत में चला गया, और अगर ना क्रॉस कर सका तो नीचे क्या है, अगर उससे गिर गया तो क्या है नीचे, जहन्नुम है। तो वा इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर एक को, एवरी सिंगल पर्सन, चाहे वो कोई पैगंबर है या कोई कोई भी है, हर एक को उस पुल को क्रॉस करना है, मैंडेटरी है। अब वहां पे पिच डार्कनेस है, उस अंधेरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगी नूर की, लाइट की, हर एक को लाइट मिलेगी अपनी। अब क्या होगा, बाज को तो इतनी रोशनी मिलेगी। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि काफिर तो ऑलरेडी जहन्नुम में जा चुके हैं, वो तो इस पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं है ना। अब यहां पे मिक्स्ड है, मुनाफिक भी हैं, पक्के मोमिन भी हैं, सारे जिन्होंने जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है, क्योंकि अब आगे जन्नत है ना, तो जन्नत पे जाने के लिए इस पुल से क्रॉस करके जन्नत में जाना है। एवरीबडी इज अज्यूमिंग के सारे क्रॉस करके चले जाएंगे, लेकिन अब ये है फाइनल टेस्ट, लिटमस टेस्ट है आपके, कौन है जिसके दिल में कितना ईमान है, उसी ईमान के मुताबिक हर एक को नूर मिलेगा। किसी को तो इतना नूर मिलेगा, इतना नूर मिलेगा कि जितना डिस्टेंस पहाड़ के बराबर, या कह लें पहाड़ के बराबर नूर मिलेगा। किसी को इतना ज्यादा नूर मिलेगा जितना खजूर का तना है, किसी को इतना नूर मिलेगा जितना हजारों मील का सफर, मदीना से लेके सना तक, यमन में एक जगह है वहां तक, इतना नूर मिलेगा, बहुत ज्यादा। तो हर एक का नूर डिफरेंट होगा, क्यों? इसलिए कि देखो हर एक का ईमान फर्क है ना, हम सब बैठे हैं, हम सब का ईमान डिफरेंट है, लेकिन कोई भी किसी के ईमान को यहां पे नाप नहीं सकता, मेजर नहीं किया जा सकता, ये अल्लाह ताला जानता है। और अल्लाह ताला दुनिया में टेस्ट्स भेजता है, मुख्तलिफ अहकामात ऐसे दिए हैं कि उन्हीं में इंसान का इम्तिहान हो जाता है कि वो कितना चल सकता है, उसका ईमान कितना है। ईमान होगा तो अमल हो सकेगा, ईमान नहीं है तो अमल नहीं हो सकेगा। जिसको अपने रब के ऊपर यकीन है ना, ईमान क्या चीज होती है? ईमान यह कि बगैर दलील के मैं मान जाऊं, मुझे दलील नहीं कुछ चाहिए, बस मैं मान गई, ये ईमान है। جس کے اندر ایمان ہوگا اللہ پر، جس پہ جس کو ایمان ہوگا آخرت پر، وہ بھلا دنیا میں سٹریٹ نہیں چلے گا کیا؟ جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا اس کو بڑی سے بڑی ہرڈلز کراس کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگی، چلتا ہی جائے گا. تو ایمان جتنا جس کا زیادہ ہوگا نا، اب یہاں پہ آج ہمیں نہیں پتا چل رہا، مگر وہاں پہ جب نور ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو سب کو پتا چل جائے گا کس کا کتنا ایمان تھا. ہم سب بھی تو ہوں گے نا وہاں پہ، تو جب نور ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو کیا پتا نہیں چلے گا کس کے پاس کتنا ایمان ہے. تو کسی کو اتنے اتنے بڑے نور ملیں گے، اتنے اتنے بڑے، اور کسی کو اتنا تھوڑا سا نور ملے گا کہ بس اس کے یہ پیر کا انگوٹھا ہے نا، اس کے آگے لگا ہوگا، جو کبھی وہ لائٹ جلے گی کبھی بجھے گی، کبھی جلے گی کبھی بجھے گی. جیسے آپ ٹیوب لائٹ کو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی وہ ایسے کرتی ہے نا مسئلے، کبھی جلتی کبھی بجھتی، کبھی جلتی کبھی بجھتی. تو اب وہ اس میں کیسے چلیں؟ کیونکہ ان کا دنیا میں ایمان کا حال کیا تھا، یہی تھا جو اس ایگزامپل میں، یہ اس مثال دی گئی نا کہ جب روشنی ہوتی چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہو جاتا ہے رک جاتے ہیں. تو دنیا میں بھی تو ایسے ہی تھے نا، جب آسانیاں ہوتی تھی تو کر لیتے تھے، جب مشکل ہوتی تھی تو رک جاتے تھے. تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تم بھی ہمیشہ چلتے نہیں رہے، تو آج تمہارے لیے بھی ہمیشہ کا نور نہیں ہے، تمہارے لیے بھی وہ نور ہے. تم بھی اسی طرح چلتے رکتے چلتے رکتے تھے نا، آج تمہارا بھی نور کبھی بند ہوگا کبھی کھلے گا، کبھی بند ہوگا کبھی کھلے گا، ذرا سا کھلے گا کبھی روشن ہوگا تو ذرا سا چلیں گے پھر اندھیرا ہو جائے گا، پھر ٹھہر جائیں گے. اسی چیز کو اگزیکٹلی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل فارم میں کر دیا. تو اب رک گئے، پھر ذرا سا نور ان کی ٹارچ جلی، ذرا سا چلے، پھر بجھ گئی. اور بعض بد نصیب ایسے ہوں گے کہ ان کا تو بالکل ہی نور بجھ جائے گا، اب ملا تو تھا لیکن اب بند ہو گیا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام لائے تو تھے لیکن کبھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اب تمہارے لیے بھی کوئی نور نہیں ہے، یہ پورے منافق تھے نا. اسی لیے اس دن وہاں پہ سورہ حدید میں ہی ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات الذین آمنوا انظرونا، ہماری طرف دیکھو، ہمیں اپنے نور میں سے دو، منافق مرد اور منافق عورتیں. اس کا مطلب عورتیں بھی تو منافق ہیں نا. وہ ایمان والوں سے کہیں گے، پکاریں گے ان کو، کہیں گے ذرا رکو، ہمیں بھی آ لینے دو، ہم بھی تمہارے نور سے تھوڑا سا نور لے لیں، تمہاری لائٹ میں سے لے لیں. تو وہ ان کو کیا کہیں گے؟ جاؤ پیچھے جاؤ، وہاں پہ نور ہے، وہاں پہ ڈسٹریبیوٹر ہے، یہاں پہ تھوڑی ہم تھوڑی دے سکتے ہیں، جاؤ وہاں سے جا کے لو. وہ پیچھے پلٹیں گے اور ان کے اور ایمان والوں کے درمیان ایک آڑ آ جائے گی، ایک دیوار آ جائے گی، ایک حجاب آ جائے گا، اور وہ ان تک نہیں پہنچ سکیں گے. اب یہ لوگ دنیا میں سب گھلے ملے رہتے تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، اسی لیے تو ان کو پکار رہے ہیں، سنو سنو ہماری بات. اور پھر ان کو کہیں گے بھی، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے دنیا میں، یاد نہیں ہے تمہیں؟ میں تمہاری فرینڈ تھی، میں تمہاری بہن ہوں، میں تمہاری بیٹی ہوں، میں تمہاری ماں ہوں. لوگ کہیں گے ایک دوسرے سے، مگر آج ایمان کے فرق کی وجہ سے دیکھو اپنے پر آئے ہوگا. ایک میں ایمان کا نور تھا اور دوسرے کا نور بجھا ہوا تھا، تو آج وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نور بجھا دیا. اور جن کا ٹمٹما رہا ہے وہ واللہ عالم کے وہ کراس کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. ہو سکتا ہے ان کا ٹمٹماتا ہی رہے، ہو سکتا ہے چلے جائیں، ہو سکتا ہے عمل زیادہ دیر کیا اور کم دیر وہ کھڑے رہے ہوں. جیسے یہاں پہ نا اگزامپل میں کہ کبھی چلے کبھی کھڑے ہوئے، ہو سکتا ہے چلے زیادہ اور کھڑے کم ہوئے. لیکن یاد رکھیں، بجلی کیا زیادہ دیر چمکتی ہے یا زیادہ دیر اندھیرا رہتا ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے؟ بتائے، بجلی تو صرف سپلٹ سیکنڈ کے لیے چمکتی ہے نا، اس کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے عمل کم ہے، کیونکہ چمک تو کبھی کبھی ہوتی ہے، اس میں تھوڑی دیر چل لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کھڑے کے کھڑے ہیں، کھڑے کے کھڑے. اللہ اکبر، اللہ حساب یسیرا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی صورت میں کہ اس دن تو دیکھے گا کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف نور ہوگا, ان کے تو آگے آگے اور دائیں دائیں نور دوڑا جا رہا ہوگا, اور اسی نور کی روشنی میں اسی سے ہیلپ لے کر وہ پھر پل صراط کراس کریں گے. اس لیے کیونکہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی, پل صراط بالکل اندھیرا ہے اور جہنم کی آگ بھی کالی سیاہ ہے, وہاں پہ کوئی روشنی نہیں ہے. جس کا تو نور پورا ہوا اور اتنا زیادہ ہوا, وہ تو چلو یا کم بھی ہوا چلو کھجور کے تنے کے برابر ہے, کسی کا پہاڑ کے برابر, چلو کوئی نہ کوئی تو ان کے پاس نور ہے نا, وہ تو کراس کر جائیں گے. لیکن کئیوں کا جو نور ہی بجھ گیا تو پھر اب کیا ہوگا. اسی لیے تو ایمان والے بھی ڈر جائیں گے, کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا, اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے. پیغمبر دوسری طرف پہنچ جائیں گے تو وہ بھی دعائیں کریں گے کہ اللہ ان کے نور کو مکمل کر دے. یہ اتنی مشکل جگہ ہے, اتنی مشکل جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تین جگہوں پہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا, اور ان تین جگہوں میں ایک یہ جگہ ہے پل صراط, جب تک کہ کوئی کراس نہ کر جائے ہر ایک کو اپنی پڑے گی. ظاہر ہے نیچے جہنم ہے, کسی کا ذرا سا پیر پھسلا تو وہ اندر گر گیا. آپ سوچیں آپ ذرا کہ کوئی کسی آپ برج سے جا رہے ہیں, بہت نیرو برج ہے, آپ کی گاڑی جا رہی ہے اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس فیل ہو گئی ہیں اور گھپ اندھیرا ہے اور نیچے سمندر ہے, پانی والا سمندر, تو حالت کیا ہوگی. اور برج کے سائڈوں کے اوپر کوئی وہ آڑ بھی نہیں لگی ہوئی, کوئی بارز نہیں لگی, کیا حالت ہوگی گھپ اندھیرے میں. تو یہ تو پانی کا سمندر ہے, اور نیچے آگ ہو تو پھر پتا ہے. یہ قربانی کے جانور ہیں نا, یہ وہاں پہ سواری بنیں گے, یہ جو قربانی آپ انشاءاللہ دیں گے آپ. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے اس دن کسی کی روشنی سے انسان کو فائدہ نہیں ہو سکے گا, ہر ایک کی لائٹ صرف اس کو فائدہ دے رہی ہوگی. تو اس لیے کسی سے بورو بھی نہیں کر سکتے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے دے دو اپنی ٹارچ, نہیں, وہ اس کے اوپر ہوگی, وہ اسی کو فائدہ دے گی, کسی اور کو نہ اسے فائدہ مل سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا جاؤ پیچھے سے جا کے لو, کوئی اپنی روشنی دے رہا, کیونکہ دے سکتے ہی نہیں ہیں. وہ جہاں جہاں جائیں گے ان کی روشنی بس ان کے ساتھ ہی جائے گی. یہ نور ہے نا جو دل میں ہے, ایمان کا نور, وہی سمجھ لیں اس وقت, اس وقت نظر نہیں آ رہا, وہ اس وقت نظر آنے لگے گا, وہ اس وقت ایک شیپ میں آ جائے گا, جیسے ہر ایک عمل ہے وہ اس وقت اس دن ایک شیپ میں آ جائے گا. اسی طرح یہ منافقت ہے, یہ اندھیرے ہیں, تو ظاہر ہے یہ تو ایمان کا نور بجھا دیتا ہے نا. ایمان نہیں ہوتا جہاں پہ منافقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جو ہے وہ چار قسم کے ہیں. ایک تو صاف دل ہوتا ہے جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہوتا ہے, ایک وہ دل ہے جو غلاف میں ہے جیسے جس کے اوپر کور ہے, تیسرے وہ دل ہیں جو الٹے ہوئے میں, اور چوتھے وہ دل ہیں جو مکسڈ ہیں. تو پہلا دل تو مومن کا دل ہے جو پوری طرح چمک رہا ہے, دوسرا دل کافر کا دل ہے جس پہ پردے پڑے ہیں, تیسرا دل خالص منافقین کا جن کے دل الٹے ہو گئے ہیں, ان کو کوئی بھی بات بتاؤ نا ان کو سمجھ ہی نہیں آنی, کیونکہ کوئی برتن الٹا کر دیں تو اب آپ اس کے اوپر سارا دن پانی چلائے رکھیں وہ بھرے گا ہی نہیں. چوتھا دل اس منافق کا دل ہے جس میں ایمان بھی اور نفاق بھی ہے, دونوں جمع ہیں. یہ جو مثال ابھی ہم نے پڑھی, اس میں دونوں چیزیں مکس ہیں, کبھی چل پڑتا ہے کبھی رک جاتا ہے, کبھی چل پڑتا ہے کبھی, یہ پکے منافق نہیں ہے ابھی. تو دونوں اللہ تعالیٰ نے شیڈز دکھا دیے, ایک پہلی اگزامپل میں پکے منافق جو کبھی اب واپس نہیں آئیں گے, اور ایک دوسری اگزامپل میں جن کے اندر ایمان اور نفاق دونوں جمع ہو چکے ہیں, اس ایمان کی وجہ سے کبھی کبھی چل پڑتے ہیں اور اس نفاق کی وجہ سے پھر رک جاتے ہیں.